ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये
ततो जयमुदीरये
नष्टप्रायेष्व भद्रेषु
नष्टप्रायेष्व भद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया
नित्यं भागवत सेवया
भगवत्युत्तम श्लोके
भगवत्युत्तम श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी
ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंध शिवजी द्वारा की गई स्तुति का गान श्लोक संख्या 64 64 ना सृष्टम
सृष्टम
स्वशक्त्या
स्वशक्त्या
इदम्
इदम्
अनुप्रविष्टः
अनुप्रविष्टः
चतुर्विधम्
चतुर्विधम्
पुरम्
पुरम्
आत्मा
आत्मा
अंशकेन
अंशकेन
अथो
अथो
विदुः
विदुः
तम् पुरुषं
पुरुषं
संतं
संतं
अंतः
अंतः
भुङ्क्ते
भुङ्क्ते
ऋषिकैः
ऋषिकैः
मधु
मधु
सारघं
सारघं
यः
यः
सृष्टं स्वशक्तेदमनुप्रविष्टः
सृष्टं स्वशक्तेदमनुप्रविष्टः
चतुर्विधं पुरमात्मांशकेन
चतुर्विधं पुरमात्मांशकेन
अथो विदुस्तं पुरुषं संतमन्तर
अथो विदुस्तं पुरुषं संतमन्तर
भुङ्क्ते ऋषिकैर्मधुसारघं यः
भुङ्क्ते ऋषिकैर्मधुसारघं यः
सृष्टं स्वशक्त्येदमनुप्रविष्टः
सृष्टं स्वशक्त्येदमनुप्रविष्टः
चतुर्विधं पुरमात्मांशकेन
चतुर्विधं पुरमात्मांशकेन
अथो विदुस्तं पुरुषं संतमन्तर
अथो विदुस्तं पुरुषं संतमन्तः
भुङ्क्ते ऋषिकैर्मधुसारघं यः
भुङ्क्ते ऋषिकैर्मधुसारघं यः
सृष्टं स्वशक्त्येदमनुप्रविष्टः
सृष्टं स्वशक्त्येदमनुप्रविष्टः
चतुर्विधं पुरमात्मांशकेन
चतुर्विधं पुरमात्मांशकेन
अतो विदुस्तं पुरुषं संतमन्तरः
अतो विदुस्तं पुरुषं संतमन्तरः
भुङ्क्ते ऋषिकैर्मधुसारघं यः
भुङ्क्ते ऋषिकैर्मधुसारघं यः सृष्टं स्वशक्तेदमनुप्रविष्टः
सृष्टं स्वशक्तेदमनुप्रविष्टः
चतुर्विधं
पुरमात्मांशकेन
अतो विदुरस्ता पुरुषा संतमन्त
अतो विदुस्तं पुरुषं संतमन्त
भुङ्क्ते ऋषिकैर्मधुसारघं यः
भुङ्क्ते ऋषिकैर्मधुसारघं यः
सृष्टं स्वशक्ते दमनु प्रविष्टः चतुर्विधं पूरमात्मां शकेन अतो विदुस्तं पुरुषं संतमन्तः भुङ्क्ते ऋषिकैर्मधुसारघं यः
सृष्टं स्वशक्ते दमनु प्रविष्टः चतुर्विधं पुरमात्मा शक्येन अथो विदुस्तं पुरुषं संतमन्तः
सृष्टं
सृष्टि से
स्वशक्त्या अपनी ही शक्ति से
इदं
इस दृश्य जगत में
अनुप्रविष्टः
प्रवेश करते हुए चतुर्विधम्
चार प्रकार के
पुरम्
शरीर
आत्म अंशकेन
अपने ही अंश रूप
अथो
अतः
विदुः
जानो
तम
उस
पुरुषम
भोक्ता को
संतम
स्थित
अंतः
भीतर
भुंकते
भोग करता है
ऋषि कई ही
इंद्रियों द्वारा
मधु
मिठास
सारघम
मधु
शहद
यह
जो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद हे भगवान आप अपनी शक्तियों के द्वारा सृष्टि कर लेने के बाद सृष्टि में चार रूपों में प्रवेश करते हैं आप जीवों के अंतःकरण में स्थित होने के कारण उन्हें जानते हैं और यह भी जानते हैं कि वे किस प्रकार इंद्रिय भोग कर रहे हैं इस भौतिक जगत का तथा कथित सुख ठीक वैसा ही है जैसा कि एक शहद के छत्ते में मधु एकत्र होने के बाद मधुमक्खी द्वारा उसका आस्वाद तात्पर्य तो तात्पर्य लंबा है इसलिए तात्पर्य का केवल पहला भाग पढ़ेंगे ठीक है तात्पर्य इस दृश्य जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्रदर्शन है और चूंकि निर्जीव पदार्थ स्वतः गतिमान नहीं हो सकता इसलिए भगवान स्वयं इस भौतिक सृष्टि में अपने अंश रूप में परमात्मा प्रवेश करते हैं वे अपने पृथक पृथक अंशों जीवों के रूप में भी प्रविष्ट होते हैं दूसरे शब्दों में जीव तथा भगवान दोनों ही भौतिक सृष्टि को गतिशील करने के लिए इसमें प्रवेश करते हैं जैसा कि भगवद गीता के 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया है अपरेयम इतस्पन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत हे महाबाहु अर्जुन इस अपरा प्रकृति के अतिरिक्त मेरी एक परा प्रकृति भी है जिसमें सभी जीव समाहित हैं जो भौतिक प्रकृति से संघर्ष कर रहे हैं और ब्रह्मांड को बनाए रखते हैं किंतु भौतिक जगत स्वतः कार्य नहीं कर सकता अतः जीव चार प्रकार के शरीरों में इसके भीतर प्रवेश करते हैं इस श्लोक का चतुर्विधम शब्द महत्वपूर्ण है। इस जगत में चार प्रकार के जीव उत्पन्न हैं। ये हैं जरायुज गुण से उत्पन्न, अंडज अंड से उत्पन्न, स्वेदज स्वेद से उत्पन्न तथा उद्भिज बीज से उत्पन्न। ये जीव भले ही देखने में कैसे ही लगें, ये सभी इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। ठीक है, इतना कर लेते हैं। मौलाना थोड़ा तिकड़े पटवेला हुई का मौलाना थोड़ा क्या बजूला अनुवाद दोहराइए। हे भगवान,
हे भगवान,
आप अपनी शक्तियों के द्वारा
सृष्टि
कर लेने के बाद
सृष्टि में
चार रूपों में
प्रवेश करते हैं।
आप जीवों के अंतःकरण में
स्थित होने के कारण
उन्हें जानते हैं और यह भी जानते हैं
कि वे किस प्रकार
इंद्रिय भोग कर रहे हैं
इस भौतिक जगत का
तथा कथित सुख ठीक वैसा ही है
जैसा कि
शहद के छत्ते में
मधु
एकत्र होने के बाद
मधुमक्खी द्वारा
उसका आस्वाद। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर प्रसंग ये चल रहा है कि भगवान शिव प्रचेताओं के ऊपर कृपा करने हेतु उनके सामने प्रकट हुए हैं। प्रचेतागण किन के पुत्र थे? राजा प्राचीन बहिष्यत। तो राजा ने अपने पुत्रों को, कितने थे पुत्र?
दस।
उनके दस पुत्रों को वन में भेजा तपस्या करने के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि शास्त्रों के अनुसार इन राजकुमारों को आध्यात्मिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से राज्य के जिम्मेदारी को संभालने के लिए तैयार होना चाहिए। तो जंगल में वो चले गए और उन्होंने तपस्या तो कर ली, और इतनी अच्छी तरह से उन्होंने साथ में मिलकर तपस्या की और कर रहे थे। किस प्रकार से तपस्या करना है, किस प्रकार से भगवान की स्तुति करनी है, शायद परिपक्व न होने के कारण उन्हें विस्तार में यह पता नहीं था, तो किसी एक उपयुक्त और योग्य मार्गदर्शक की आवश्यकता थी। तो सदैव भगवान अपने भक्तों के लिए हर प्रकार की व्यवस्था करते हैं, भौतिक प्रगति के लिए और आध्यात्मिक प्रगति के लिए विशेष रूप से। जब किसी भी व्यक्ति के हृदय में या किसी भी जीव में भगवान को जानने की इच्छा होती है, तो भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं जिसके द्वारा उन्हें ऐसे भक्तों की संगति प्राप्त हो जाती है जो कि उनका मार्गदर्शन कर सके। चैतन्य चरितामृत से श्रील प्रभुपाद ने क्या बताया है कि कैसे भगवान जीव के ऊपर कृपा करते हैं और उन्हें वैष्णव भेज देते हैं। भगवान की कृपा से ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो ब्रह्मांड में अनेक जन्मों से अनेक योनियों में भ्रमण करने के बाद बिरला ही किसी एक भाग्यवान जीव को भगवान और गुरु की कृपा से भक्ति लता का बीज प्राप्त हो जाता है। परंतु यह कैसे होता है? भगवान की कृपा होती है कि गुरुजनों की कृपा होती है कि कैसे होता है? ये एक वाक्य श्रील प्रभुपाद जी ने अनेक बार कहा, किसी को याद है इस संबंध में? भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं। तो भगवान ने ये एक पद्धति स्थापित कर ली है। जब कोई व्यक्ति पूछते हैं कि भगवान सबके लिए हैं और भगवान सबके हृदय में है, तो हमें हमारा संबंध भगवान के साथ व्यक्तिगत है और प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष है, तो और किसी व्यक्ति को बीच में आने की क्या आवश्यकता है? ऐसे लोग कहते हैं ना। तो अब क्या उत्तर देंगे? कई लोग कहते हैं कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं सीधे भगवान की प्राप्ति कर लूंगा अपने आप, और किसी की आवश्यकता मुझे नहीं है। यदि ऐसे कोई तर्क करे तो आप कैसे उत्तर देंगे? आमटे से कोई आया आपको पूछने के लिए तो क्या बोलेंगे आप?
जैसे कि कुछ उदाहरण से, डॉक्टर बनना है तो कॉलेज में जाना है डॉक्टरी के, और साथ साथ में जो सिखा रहे प्राध्यापक उनसे सुनना है, तभी सर्टिफिकेट मिलेगा। अपने आप पढ़ाई करके रहेंगे तो सर्टिफिकेट, मतलब कि सर्टिफिकेट नहीं मिलकर वो डॉक्टर नहीं बनेंगे।
बिल्कुल ठीक। देखिए, इस भौतिक जगत में यदि हमें किसी भी क्षेत्र में कोई योग्यता प्राप्त करनी है जिसकी मान्यता सारे समाज में है, एक अधिकृत कोई हमें योग्यता प्राप्त करनी है, तो हमें अन्यों की सहायता लेनी पड़ती है। हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि मैं अपने आप ही डॉक्टर बन जाऊंगा, मुझे मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता नहीं है, अध्यापकों की आवश्यकता नहीं है, किताबों की आवश्यकता नहीं है, बस अपने आप ही मैं सब कुछ सीख लूंगा। तो ऐसे बात कोई स्वीकार करेगा? कोई कहेगा कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ, अपने आप ही सब में अपनी ही कानून बना लूंगा कि कैसे हिसाब किताब रखना चाहिए? ऐसे नहीं हो सकता ना। तो जब भौतिक क्षेत्र में भी, किसी भी क्षेत्र में हमें अधिकृत योग्यता यदि प्राप्त करनी है जिसकी मान्यता सब जगह होती है, तो एक पद्धति होती है और अन्यों से मार्गदर्शन लेना आवश्यक होता है। किसी को इलेक्ट्रिशियन भी बनना हो, यहाँ तक कि किसी को किसान भी बनना हो, तो एक दूसरे इलेक्ट्रिशियन से, दूसरे किसान से सीखना होता है। सही है ना? तो जब भौतिक क्षेत्र में ऐसे है तो आध्यात्मिक क्षेत्र में क्यों नहीं होना चाहिए?
महाराज, ऐसे फिर वो तर्क ऐसे दे सकते हैं कि आप सामाजिक स्तर पर स्वीकृति करने के लिए डॉक्टर बनने के लिए, ताकि लोग आपको स्वीकार करें डॉक्टर, लेकिन यहाँ पे तो सीधा मेरा भगवान के साथ संबंध है, मैं और बीच में भगवान है, फिर बीच में गुरु के आने की आवश्यकता क्या है? यहाँ पर तो लोग समाज में स्वीकार करना है मुझे।
तो केवल समाज में स्वीकार करना है इसके लिए नहीं, हमें ये पूछना चाहिए समाज कब स्वीकार करेगा हमें? जब हमारे अंदर वो योग्यता होती है। योग्यता के बिना हम तो डॉक्टर नहीं बन सकते, ना कोई इंजीनियर बन सकते हैं, सही है? तो उसी प्रकार से योग्यता प्राप्त करने के लिए हमें अन्यों की सहायता चाहिए। कोई क्या ये कह सकता है कि अन्यों की सहायता के बिना मैं डॉक्टर बन जाऊंगा? क्या ये संभव है? नहीं है। तो उसी प्रकार से भगवान को भी जानना है, आध्यात्मिक जीवन में हमें प्रगति करनी है तो हमें जानना चाहिए, ये ज्ञान सीखना चाहिए, किसी से तो सीखना चाहिए। अभी देखिए हमारे कितने भक्त किसान हैं, अपने गांव में से आए। आप में से कितने भक्त पहले खेती करते थे अपने गांव में? हाथ ऊपर कीजिए। शेतकरी कितने आए थे फिर बड़ा? 3-4। लहानपणा मध्ये शेती शिकली ना? शिकलं ना तुम्ही? कोणाकडून शिकले तुम्ही?
वडिलांच्याकडून
होय ना? कोणाला बघून शिकले ना तुम्ही? की असंच मनामध्ये आलं की नाही असं करायचं आणि करून टाकलं, असं नाही ना? तो देखो ये भी भागवत प्रवचन में आए हैं, सुनने हैं। तो किसी से तो हम सीखते हैं, है ना? किसी से सीखे बिना हम कोई चीज नहीं जान सकते। हाँ, एकाध बार कभी ऐसे कोई व्यक्ति हो जाते हैं जिनके पूर्व जन्म के आध्यात्मिक संस्कार इतने प्रबल होते हैं और इतनी प्रगति उन्होंने पूर्व जन्मों में की हुई होती है कि इस जन्म में स्वाभाविक रूप से वो साक्षात्कारी होके ही जन्म लेते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ही दुर्लभ होते हैं। स्वाभाविक रूप से सभी को सीखना पड़ता है और ऐसे अनुभवी और शिक्षित व्यक्तियों से सीखना पड़ता है। तो जब हर एक क्षेत्र में ये नियम लागू होता है तो आध्यात्मिक क्षेत्र में क्यों नहीं होना चाहिए? तो इस प्रकार से ये जब भगवान चाहते हैं, देखते हैं कि कोई जीव मेरी प्राप्ति करना चाहता है, तो भगवान ऐसी व्यवस्था कर देते हैं उसके लिए कि जिसके द्वारा उसको कोई मार्गदर्शक मिल जाता है या मिल जाते हैं। और किस रूप में ये भगवान करते हैं, ये व्यवस्था कैसे करते हैं भगवान? चैत्य गुरु। चैत्य गुरु कौन है? जो चित्त में बैठे हुए गुरु, हमारे चित्त के अंदर कौन से गुरु बैठे हुए हैं? परमात्मा, जो भगवान के विस्तार हैं। तो वो अंदर से मार्गदर्शन करते हैं। भगवद गीता का कौन सा श्लोक है जिसमें परमात्मा की भूमिका के बारे में बताया हुआ है? ठीक है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो भगवान कहते हैं सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टः, मैं हर एक के हृदय में विराजमान हूँ और अंतःकरण में स्थित होकर मैं हर एक को क्या देता हूँ? स्मृति देता हूँ, विस्मृति देता हूँ और ज्ञान भी देता हूँ। तो जब हम किसी चीज को भूल जाते हैं वो भगवान से ही आती है वो विस्मृति। कोई चीज हमें याद आती है तो भगवान की कृपा से ही याद आती है। तो इस प्रकार से भगवान जो कि परमात्मा के रूप में बैठे हैं, चैत्य गुरु चित्त में बैठे हैं, तो वो हमारी सहायता इस प्रकार से करते हैं। और परमात्मा की भूमिका के बारे में और कौन से श्लोक में बताया गया है?
ईश्वर सर्वभूतम।
बहुत अच्छा, कौन सा है वो श्लोक?
1860।
नहीं, पूरा श्लोक।
ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुनो तिष्ठति रामायं सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया।
बहुत अच्छा। ईश्वर सर्वभूतानां, ईश्वर सबके हृदय में स्थित हैं और अंदर स्थित होकर क्या करते हैं? ब्राह्मण सर्वभूतानां यन्त्रारूढानि मायया, सबके भ्रमण का नियंत्रण करते हैं। सबके भ्रमण का नियंत्रण करना, इसका तात्पर्य क्या है? कि कौन किससे मिलेगा, कौन किसका शत्रु बन जाएगा, कौन किसका मित्र बन जाएगा, कौन किसके परिवार के सदस्य बन जाएंगे, हमारे आसपास में रहने वाले लोग कौन होंगे, ये सारे चीजों की व्यवस्था भगवान करते। हमारा भ्रमण यहाँ वहाँ हो जाता है और कहते अकस्मात उनसे हम मिल गए। अकस्मात ऐसे नहीं होता है, किसी व्यवस्था के अनुसार होता है। और कोई श्लोक जिसमें परमात्मा की भूमिका का उल्लेख भगवान ने किया हो? ओके, कौन बताएंगे पूरा श्लोक? शुरुआत तो है उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर है परमात्मेत्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परम। तो देहे अस्मिन् परम पुरुषः, तो इस देह के अंदर परम पुरुष निवास करते हैं। और वो क्या करते हैं? वो उपद्रष्टा हैं, अनुमंता हैं, भर्ता हैं, भोक्ता हैं, वास्तविक भोक्ता वही हैं। तो ये परमात्मा की भूमिका है। परमात्मा परम आत्मा हृदय में स्थित होकर भगवान हमारा मार्गदर्शन करते हैं। परंतु भगवान के मार्गदर्शन को स्वीकार करना या नहीं करना, ये हमारे हाथ में है। यदि हम चाहें तो हम स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं चाहेंगे तो स्वीकार कर लेंगे। जो भगवान के आदेशों का पालन करते हैं, उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। परंतु इसमें सावधानी की बात भी है। हमारे हृदय में परमात्मा की आवाज आती है, परंतु परमात्मा की आवाज के साथ साथ एक दूसरी आवाज भी आती है। कौन सी आवाज है वो?
मन की।
मन, मन की बात, मन का आवाज। तो कभी कभी भेद करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये मन बोल रहा है या अंदर से भगवान बोल रहे हैं। तो मुझे याद है मेरे बचपन में एक खूनी थे। वो क्या करता था वो आदमी, सड़कों पे जो गरीब लोग सोते थे ना, उनको जाके मार देता था जब वो सो रहे होते थे। तो कई ऐसे खून हो गए, हत्याएं हो गई, और सारे शहर में इतना भय फैल गया, खास करके उन गरीब लोगों जो कि बाहर ऐसे सोते थे खुलेआम। इतना सब पहरा देने लगे, सब लोग रात को एक दो आदमी लोग बैठ के पहरा देते थे, और ऐसे अनेक हत्याएं हो गई। और फिर अंततः वो आदमी पकड़ा गया, और उसका नाम था, किसी को याद है? तो यूं नहीं, रामन राघव करके उसका नाम था, रामन राघव। तो इतना छा गया था कि बाद में जब बच्चे एक दूसरे को डराना चाहते थे तो देखो रामन राघव आ रहा है, देखो सब डर जाते। तो ये रामन राघव जो है, जब वो अदालत में आया, उसको पुलिस ने पकड़ लिया और उसको अदालत में जज के सामने आए, तो जज ने पूछा, भाई तुम क्यों करते थे ऐसे? बिना वजह कोई मासूम आदमी सो रहा है, ना जान ना पहचान ना कुछ, उसने ना तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है ना तुम उसके कुछ जानते हो, किस कारण से तुम जाके इन लोगों की हत्या करते हो? जब वो सो रहे होते हैं, तो उसने उत्तर दिया, मुझे अंदर से भगवान की आवाज आती है, भगवान ने मुझे आदेश दिया कि मुझे ऐसे करना चाहिए। अब भगवान थोड़ी ना ऐसे आदेश देंगे। तो उसका मन जो कि विकृत था, उसके विकृत मन की आवाज थी, ये भगवान की आवाज नहीं थी। भगवान ऐसे क्यों कहेंगे? तो वो समझ नहीं पाया। उसके अंदर कोई समस्या थी, मानसिक रोग था कोई, जिसके कारण वो ऐसे सोच रहा था कि भगवान मुझे बोल रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि जाके इनकी हत्या करो। तो न्यायाधीश ने तो बिल्कुल इस बात को स्वीकार नहीं किया, स्वाभाविक है, कौन ऐसे स्वीकार कर सकता है। तो उसे दंड मिला, मृत्यु दंड भी मिला, शायद बाद में फांसी फांसी मिल गई उसे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान की आवाज कौन सी है और मन का आवाज कौन, ये इसमें भेद करना बहुत आवश्यक है। तो कैसे हम भेद कर सकते हैं? आवाजें तो बहुत सारी आती है ना अंदर से, ऐसे करो वैसे करो। तो मन की आवाज कौन सी है और भगवान की आवाज कौन सी है, इसमें भेद हम कैसे कर सकते हैं? कोई बताइए।
My understanding is that Krishna says Tesham Satati Yuktanam in that verse, but only if you're always worshipping Krishna, then Krishna gives the Dhamma Buddhi Yogam Dham. But otherwise, you don't get specialized instructions, you get Shastric instructions. So it's best you rely on Shastric instruction until you're at a stage where you're constantly worshipping Krishna all the time.
Vare, Murugan Prabhu bol rahe hain, sahi uttar diya ki तेषाम सतत युक्ता नाम श्लोक भगवद गीता में है, उसमें भगवान कहते हैं कि जो सतत भगवान कृष्ण की उपासना में, भगवान कहते हैं अपनी उपासना में लगे रहते हैं, उनको मैं सद्बुद्धि देता हूँ, अंदर से ही मार्गदर्शन देता हूँ आगे बढ़ने के लिए। परंतु जो इतने तत्पर नहीं रहते हैं भक्ति में, उनके लिए आदेश होते हैं। तो बहुत सही है, अच्छा उत्तर है, परंतु और विस्तार में मुझे चाहिए, साधारण भाषा में। यदि हमारे मन के अंदर कोई विचार आया, हम भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, शरणागत भी हैं, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार ये है या नहीं है, इससे हम भेद कर सकते हैं। तो हमें देखना चाहिए ये इसको खून करने की बात आई है, ये गुरु साधु शास्त्र में है कि नहीं है। नहीं है तो फिर नहीं, बहुत सरल बात है हमारे लिए। तो इसलिए भगवान जो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में विराजमान हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परमात्मा की कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कर्ता, कर्ता अर्थात करने वाला, करने वाले के बारे में भगवद गीता में क्या बताया गया है, कौन कर्ता है? कौन सा श्लोक? यस
327
कार्य कारण कर्तृत्व। हां, कार्य कारण कर्तृत्व।
कौन कार्य करता है भगवद गीता के अनुसार?
प्रकृति।
हां, प्रकृति है क्रियमाणानि पुनः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहम् इति मन्यते। तो जो अल्पज्ञ होते हैं वो सोचते हैं कि कर्ता मैं हूं, परंतु कर्ता कौन है? प्रकृति है। परंतु प्रकृति क्या अपने आप कार्य कर सकती है? तो प्रकृति के पीछे कौन है?
भगवान।
कौन से श्लोक में? हाँ, तो भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जीव अपने आप को कर्ता समझता है, परंतु वो कर्ता नहीं है। कर्ता प्रकृति है, परंतु प्रकृति भी कर्ता नहीं है, क्योंकि प्रकृति के पीछे भगवान है। मया अध्यक्षेण प्रकृति है, तो मेरे अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। इसलिए यहाँ पर इस श्लोक में और तात्पर्य में भी यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रकृति अपने आप में सक्रिय नहीं हो सकती या अपने आप में वो गतिमान नहीं हो सकती है। प्रकृति भौतिक है और गतिमान होने के लिए, क्रियाशील होने के लिए आध्यात्मिक शक्ति की उपस्थिति आवश्यक है। इसलिए ये आध्यात्मिक क्षेत्र दो प्रकार से इस भौतिक प्रकृति में प्रकट हो जाते हैं। कौन से दो रूपों में? एक तो है परमात्मा और दूसरे
जीवात्मा।
इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ भगवद गीता के एक श्लोक से पुष्टि देते हैं, अपरेयमितस्त्वन्या प्रकृति मिथिमे पराम जीव भूता महाबाहो धार्य येदम धार्यते जगत। ये जगत का धारण कौन करता है? ये जीवात्मा करता है, क्योंकि ये प्रकृति तो जड़ पदार्थों से बनी हुई है। जड़ पदार्थ क्रियाशील नहीं होते हैं। जब आत्मा प्रवेश करती है तब वो जड़ पदार्थ जो तथाकथित प्राण को प्राप्त हो जाता है, जीव उसको मिल जाता है। तो इस प्रकार से जीव और परमात्मा, जीवात्मा परमात्मा दोनों की उपस्थिति आवश्यक है और फिर ये प्रकृति को क्रियाशील बनाते हैं। अच्छा, अब ये बताइए साधारण, अब मुझे उंगली ऊपर करनी है तो ये कौन कौन कार्य इसमें, किन का योगदान है इसमें?
मन का, बुद्धि,
कर्ता, इंद्रियम।
ठीक है, मन चाहता है उंगली उठाओ, फिर बुद्धि मार्गदर्शन देकर नहीं, देखो ये ऐसे करना चाहिए। हम भोजन लेना चाहते हैं तो मन करता है, भूख लगी है, स्वादिष्ट भोजन सामने है, अब मुझे भोजन खाना है, तो बुद्धि हमें मार्गदर्शन करती है कि देखो जाके बैठो वहाँ और उंगली इस प्रकार से उठाओ, फिर उसको मुंह में डालो। बुद्धि मार्गदर्शन करती है, फिर बुद्धि के पीछे भी कोई है? अहंकार, जिससे हमें लगता है कि मैं ये शरीर हूँ, और उनके पीछे इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परसस्तु सह। तो इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे आत्मा है, आत्मा से परे परमात्मा है। तो इन सब की अनुमति चाहिए। छोटे से छोटे कार्य करने के लिए भी एक श्रृंखला होती है। इसलिए छोटी सी उंगली उठाने के लिए भी परमात्मा यदि अनुमति नहीं देंगे हम नहीं कर पाएंगे। जिनको पैरालिसिस की बीमारी होती है ना, उनको पता है कभी कभी उंगली हाथ उठा नहीं सकते, कभी कुछ नहीं कर सकते। मन करता है, बुद्धि चाहती है कि हम करें, परंतु जब प्रकृति और परमात्मा साथ नहीं देते हैं तो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए परमात्मा और जीवात्मा दोनों, तो कर्ताओं में जीवात्मा भी कर्ता मानी जाती है। क्यों? इच्छा, हर चीज का उद्गम इच्छा है, इच्छा से सब कुछ उत्पन्न होता है और इसके कारण जीव जो है ये भौतिक जगत में जन्म लेता है। तो कौन से श्लोक में बताया गया है कि जीव का पतन यहाँ पे भौतिक जगत में क्यों होता है? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परं तप। सर्ग मतलब ये सृष्टि, यान्ति मतलब आते हैं। तो जीव यहाँ पे प्रवेश करता है क्यों?
इच्छा
और द्वेष, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन, मोहित हो जाता है इन द्वंद्वों के द्वारा और इसलिए फिर उसे संसार में आना पड़ता है। और फिर पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जय गुणे कारणम गुण संगस्य सदसद योनि जन्मसु। फिर उसे विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। कितने योनियां हैं? 84 लाख योनियां हैं। और यहाँ इस श्लोक में चतुर्विधम शब्द का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि चार प्रकार के शरीर या देह यहाँ पर जीवों को प्राप्त हो जाते हैं। किसी को याद है तात्पर्य में जो पढ़ा था, कौन से चार प्रकार के वर्ग हैं ये? जरायुज, ज मतलब जन्म, जरायुज अर्थात जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं, जैसे मनुष्य हैं और जानवर हैं, वो सब गर्भ से उत्पन्न होते हैं ना। हमारा जन्म तो हमारे माँ के गर्भ से हुआ, तो इसलिए जरायुज और अंडज, जो अंडे से पैदा होते हैं, जैसे कि पक्षियां हैं। फिर तीसरा स्वेदज, स्वेद अर्थात पसीना, तो पसीने से कौन उत्पन्न होते हैं? कीटाणु, बहुत छोटे 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 कीटाणु होते हैं, वो भी वहाँ पलते फूलते हैं, क्योंकि वातावरण ऐसे होता है, जिनको हम बैक्टीरिया वगैरह कहते हैं, उनका भी जन्म होता है। और चौथा उद्भिज अर्थात बीज, जैसे पेड़ पौधे होते हैं सब, उनका जन्म बीज के माध्यम से होता है। तो जीव बीज में प्रवेश करता है और फिर उस जीव को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से भगवान ने संपूर्ण सृष्टि में ऐसी व्यवस्था कर दी है, परंतु इनके लिए दोनों परमात्मा और जीवात्मा की उपस्थिति आवश्यक है। तो ऐसे शिव जी यहाँ प्रचेताओं को उपदेश दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर स्तुति है जो शिव जी करते हैं और वो उनको सिखा रहे हैं प्रचेताओं को। प्रचेतागण ये ध्यान से सुन रहे हैं, एक बार उन्होंने सुन लिया मात्र और आगे चल के उनको कंठस्थ हो गया और उसका सतत पठन करते रहे, वो उच्चारण करते रहे, भक्ति भाव से अपनी तपस्या करते रहे और अंततः भगवान प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गए। और आगे चल के कल जब आप पढ़ेंगे तो इस तात्पर्य का दूसरा भाग भी आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। आज हमारे बीच में बहुत दूर से थोड़े भक्त भी आए हैं। एक भक्त हमारे हैं श्रीमान आवगेकर जी, जो पुणे से आए हैं, हमारे बीच में पहली बार बेलगाम में आए, और उनकी सुपुत्री चारुदेशन राधिका माता जी, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं सिडनी, वो भी आए हैं, और उनके पुत्र यहाँ भक्त मृगांक, जिन्होंने इतना अच्छा उत्तर दिया, वो तीनों हमारे बीच में यहाँ आज आए हैं। तो उनका स्वागत हम करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र कह के।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा। तो आप तीनों का स्वागत है यहाँ पे। आशा करते हैं आपको यहाँ गोकुल धाम इतना अच्छा लगा कि आप बार बार यहाँ पर आएंगे। हिंदी समझ में आती है? थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, ठीक है। कोई प्रश्न है? ठीक है,
सॉरी, आई नो आई वुड प्रोबब्ली वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन लेटर, बट इफ वी से दैट परमात्मा इज ऑलवेज सैंक्शनिंग एवरी एक्शन, देन द क्वेश्चन अगेन अराइजेस एज टू व्हाई द वर्ल्ड इज देन टिल्टेड टुवर्ड्स सफरिंग इन द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज़ इफ वी से bad things happen, someone chooses to kill someone else, and Paramatma sanctions it, then you say why? Then you have to say, well, because that person had desire because of his conditioning, and the other person had karma. Then we say why? So then you have to say, well, the world was designed in a way that people are allowed to take their desires out on other living entities. But why? What? Like, just because, then we say, because the world was created so living entities could express their free will. then why did Krishna create a world where living entities could express their free will in such a way that other entities could be harmed? Why couldn't it not be either a self-contained thing or a world where perverse things didn't happen? So that's the question.
So, Mugang ka prashna kafi vistar mein hai. It's a detailed question. So, this question is that when ये भगवान इस प्रकार से अनुमति परमात्मा के रूप में भगवान इस प्रकार से अनुमति क्यों देते हैं जब एक व्यक्ति कोई गलत काम करना चाहता है जैसे किसी के ऊपर प्रहार करना चाहता है किसी की हत्या करना चाहता है तो परमात्मा के अनुमति के बिना ये संभव नहीं है तो उसकी इच्छा है उसके कर्म उस प्रकार से हैं अनुमति दे देते हैं और जिसकी हत्या होती है उस व्यक्ति के प्रारब्ध में भी ऐसे लिखा है कि उसकी हत्या होनी है तो इसलिए ऐसे होता है परंतु क्यों तो ऐसे क्यों कह के पीछे हम जाते हैं कि अंततः ये सब क्यों है तो मूल प्रश्न कहां आता है कि ये सृष्टि का निर्माण भगवान ने क्यों किया और जीव यहां पर क्यों आए तो सृष्टि का सृष्टि की रचना भगवान ने जीवों के लिए की है और उसका उत्तर जो श्लोक पहले बताया था इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत क्योंकि जीव चेतन है चेतना कॉन्शियसनेस का अर्थ है स्वतंत्रता थोड़ी सी स्वतंत्रता जीव और भगवान का जो संबंध है वो एक प्रेम का संबंध है प्रेम करने के लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता है स्वतंत्रता के बिना प्रेम का कोई अर्थ नहीं है यदि कोई किसी के सर के ऊपर बंदूक रख के बोले मुझसे प्रेम करो तो ऐसे प्रेम नहीं होता है प्रेम स्वेच्छा से होता है तो यदि प्रेम चाहिए जो कि जीव और भगवान के बीच में मूल संबंध है तो फिर स्वतंत्रता जीव के पास होनी चाहिए और है क्योंकि जीव भगवान कृष्ण का अंश है तो भगवान के गुण भी अंश रूप में अंश मात्रा में जीव के पास है तो जब प्रेम करने की स्वतंत्रता है तो प्रेम नहीं करने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए अर्थात स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है तो कभी कभी जीव जब ये तट पे खड़ा हुआ होता है उसको चयन करना होता है चूज करना होता है कि मुझे भगवान से प्रेम करना है भगवान के शरण में जाके उनकी सेवा करनी है या मुझे फिर स्वतंत्र होके भोग करना है तो इस द्वंद्व में जब पड़ जाता है फिर इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत फिर सर्गे यान्ति फिर वो यहाँ पे आ जाते हैं तो क्योंकि उस जीव हम सब जो यहाँ पर इस भौतिक सृष्टि में हैं इसलिए हैं क्योंकि इसी चक्र से हम भी गुजरे हुए हैं हमने भी एक समय तट पे खड़े होकर ये इच्छा की थी कि मुझे भगवान से अलग होकर भोग करना है तो भगवान ने कहा ठीक है तुम अलग होना चाहते हो जोर जबरदस्ती तो नहीं करना है मुझे कर सकता हूँ मैं सर्वशक्तिमान हूँ परंतु फिर इसमें रस नहीं है जबरदस्ती किसी को दबाव में रख के प्रेम करो कहेंगे तो उसमें रस नहीं है तो भगवान कहते हैं ठीक है मुझसे तुम्हें दूर जाना है मुझसे विमुख होना है वास्तव में तुम मुझसे स्वतंत्र नहीं हो सकते संभव नहीं है परंतु तुम होना चाहते हो इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसे स्वप्न की दुनिया सपनों की दुनिया में भेजूंगा ऐसे दुनिया में भेजूंगा जहां तुम सपने देख सकते हो कि तुम भोक्ता हो तुम मालिक हो स्वामी हो वहां पे जाके जब सपने देखते रहोगे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एक न एक दिन कोई ऐसे भक्त मिल जाएंगे ऐसे यहाँ गोकुल धाम के भक्त हैं, ऐसे कोई मिल गया, फिर उन्होंने हमारे आंखें खोल दी कि नहीं नहीं भगवान से स्वतंत्र होकर भोग नहीं करना है, हमें भगवान की सेवा करनी है, भगवान के शुद्ध भक्त बन के भगवान के पास लौट के जाना है। तो जब तक इस चेतना की अवस्था को हम प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक हमें अपने ही किए हुए कर्मों के फलों को भुगतना होगा, हमारी इच्छाओं के फल जो हैं उनको भुगतना होगा। तो जिम्मेदार इसके लिए हम हैं क्योंकि ये हमारी इच्छा है, और हम सब इतने मिले हुए हैं, ऐसे एक जाल है ये कि हम सब के कर्म जो हैं एक जाल में हम अटके हुए हैं एक दूसरे से, इसलिए हमारा कर्म इनसे संबंधित है, इनका कर्म इनसे संबंधित है, इसलिए मेरा भी इनके साथ कर्म का संबंध है कोई। तो मैं किसी व्यक्ति की हत्या करता हूँ तो उस व्यक्ति का कर्म ऐसे था क्योंकि उसने ऐसे पहले कोई कर्म किया था, क्योंकि उसने पहले कोई इच्छा ऐसे की थी, और मैंने भी ऐसे कोई गलत काम किए थे इसलिए मुझे ऐसी हत्या करने की इच्छा मन में आई। मेरे भी भाग्य में था, मेरे कर्मों के अनुसार ऐसा था कि मुझे ऐसे करना है, तो मैं भी उसमें लग गया। फिर ऐसे इस चक्रव्यूह में हम फंस जाते हैं और इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जितना हम संघर्ष करते हैं उतनी ही ज़्यादा कठिनाई से हमें और संघर्ष करना पड़ता है। जैसे एक मक्खी मकड़ी के जाल में, स्पाइडर्स वेब में अटक जाती है तो बहुत संघर्ष करती है मक्खी, परंतु जितना ज़्यादा वो संघर्ष करती है उतनी और वो पकड़ी जाती है उसमें, अटक जाती है उसमें। उसी प्रकार से हम जब ज़्यादा संघर्ष करते हैं तो हमारा बंधन बढ़ जाता है। मक्खी को मुक्त करने के लिए बाहर से कोई व्यक्ति वो मकड़ी के जाल को काट ले तो वो मक्खी मुक्त हो सकती है। उसी प्रकार से जब कोई मुक्त व्यक्ति हमें छुड़वाएगा इस चक्र से, इस भयंकर चक्र से, तब हम मुक्त हो सकते हैं। इसलिए गुरु परंपरा है, भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान हमें दिया है, सारे भक्तों के समाज में हमें प्रोत्साहन मिलता है ताकि इससे हम कट के निकल जाएं। तो मूल बात क्या है, ऐसे क्यों 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 जब हम पीछे करते हैं, ऐसे प्रश्नों को करना भी महत्वपूर्ण है, परंतु ये क्यों का कभी ना कभी पूर्ण विराम होता है, फुल स्टॉप। एक ऐसे स्थान पर हम पहुंच जाते हैं कि इसके आगे क्यों नहीं हो सकता। तो हमारे अंदर हमने ऐसे क्यों किया, हमारी इच्छा थी, हमारी इच्छा क्यों थी, क्योंकि ऐसे भगवान ने हमें बनाया, भगवान के अंश हैं। तो भगवान में इच्छा क्यों है, क्योंकि भगवान परम है। भगवान क्यों है, अभी हैं। एक हम जितना हम ले जाएंगे क्यों क्यों क्यों, अंततः उसका पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, एक न एक जगह तो होना ही होना है। फिर हम अंततः कृष्ण तक पहुंचते हैं, अंततः कारण वहां है सब कुछ। कृष्ण का अस्तित्व सनातन है। अब कृष्ण क्यों है, अब है कृष्ण को किसने बनाया, किसी ने नहीं बनाया। कब बने वो, पहले से, अनादिकाल से है, कोई काल की सीमा नहीं है। तो अंततः हमारे क्यों प्रश्नों का जवाब कृष्ण में आ जाता है। इसलिए सर्व कारण कारणम, समस्त कारणों के कारण अंततः कृष्ण है।
Can I ask a follow-up
question? Yes.
So that makes sense. Your answer makes sense as to why there can be so many people who are here. But then it seems almost like either the spiderweb example or the Dukkhalaya Mashasatam that Krishna says, it seems as if you want to love Krishna, then here, have the spiritual world where you can be happy forever. But if you don't want to love Krishna, then here, have this illusory world where you can only be miserable. Doesn't that make Krishna cruel if Krishna is the... nicest, most benevolent person, then he would allow you to be happy whether or not you want to love him.
So Murugan ka prashn ye hai ki Bhagwan jeevon ko do marg dete hain. Ek, aap mere dham mein raho, meri seva karo, mujhse prem karo, aur bahut sukhi raho yahan par. Parantu mujhse swatantra rehna chahte ho, tumhare liye sapno ki duniya hai, ye bhautik srishti hai, jisme bahut kasht hai. To kya Bhagwan aise itne krur nahi hai kya? Kyunki wo hame bas bahut Bhagwan ke dham mein rahi nahi rehna hai, to aise jagat mein vyavastha unhone kar di hamari. जहाँ कितना कष्ट है, दुख है, तो यदि वास्तव में भगवान हमसे प्रेम करते हैं, तो हमें उन्होंने एक आसान रास्ता क्यों नहीं दिया है ठीक होने के लिए? सही प्रश्न है. तो इसका उत्तर ये है कि कभी-कभी जब बच्चे को कोई बीमारी हो जाती है, तो दवाई की आवश्यकता पड़ती है, औषध की. और कभी कभी औषध जो होते हैं वो कड़वे होते हैं, बच्चे को अच्छा नहीं लगता. तो क्या माँ क्रूर है बच्चे को वो कड़वा औषध देने के लिए? यदि कोई कहे कि उसको आइसक्रीम दे के, कुल्फी दे के क्यों नहीं ठीक किया, कोई पूछ सकता है ना? परंतु वो कुल्फी, वो आइसक्रीम उस समय उसके लिए हानिकारक है. तो वो औषध ही एकमात्र उपाय है, तो जिससे फिर वो बच्चे को अच्छा नहीं लगता. बच्चा बोलता है ये कड़वा है, मुझे नहीं लेना है, तो किसी न किसी तरह से उसको बोल बोल करके दे देते हैं. उसी प्रकार से जीव इस मानसिक स्थिति में होता है, चेतना की अवस्था में होता है, जिसमें कि वो भगवान के आदेशों का पालन नहीं कर सकता है. और यदि भगवान कुछ ऐसे आसान रास्ता दे दे, तो अपने आप से जीव ठीक रास्ते पे नहीं आएगा. तो कभी कभी यहाँ भगवान को ऐसे कड़वे औषध देने पड़ते हैं जिसके द्वारा फिर व्यक्ति ठीक हो जाता है. तो ये संसार में कष्ट क्यों है, ये संसार में दुख क्यों है, कोई बता सकते हैं?
डॉक्टर मेडिसिन दे रहे, इसका मतलब वो थोड़ा दर्द हो गए, मगर वो मूड में नहीं दे रहे कि हमको दर्द देना है, उनको तबीयत ठीक करने के लिए वो मेडिसिन दे रहे.
तो ये दर्द जो है, ये कष्ट जो है, ये भगवान की कृपा है. तो जैसे वो कड़वा औषध जो है वो माँ की कृपा है उस बच्चे के ऊपर, है ना? तो माँ क्या क्रूर है? माँ क्या चाहती है कि उस कड़वे औषध को लेकर बच्चे को कष्ट होता है, वो लेना नहीं चाहता है, रोता है, हंगामा करता है, तो क्या माँ क्रूर है? नहीं. माँ का उद्देश्य क्या है? प्रेम का भाव है. वो बच्चे को ठीक देखना चाहती है, बच्चा ठीक हो जाए जल्दी से. परंतु ये उपाय है, यदि बच्चे के मन के अनुसार माँ कार्य करे तो बच्चा ठीक नहीं हो पाएगा. तो बच्चा यदि, जो जीव यदि चाहे कि मैं बिना कोई कष्ट के ठीक हो जाऊँ, मेरी चेतना ठीक हो जाए, तो ऐसे संभव नहीं है. यदि जीव ऐसे ठीक हो जाए तो ठीक है, पर उसे भौतिक जगत में आने की आवश्यकता ही नहीं है. परंतु यदि जिद करके जीव आत्मा यहाँ पर आ जाता है, तो फिर कठिनाई हो जाती है.
But then doesn't that imply that the desire to want to enjoy separately from Krishna is a disease? But why? Why can't, then that's not free will either, right? Like if it's really free will, then it's, you know, I can enjoy separately. Why is
that? Very nice question. Kisi ne samjha Krishna? You understood the question? Huh? You understood the question? Can you say it in Hindi?
भोग करना यदि भगवान की इच्छा के विरुद्ध है, यदि भगवान के भगवान पसंद नहीं करते हैं, तो फिर ये भोग करना नहीं करना भी तो भगवान के नाम जो हमारा स्वतंत्रता है उसके विरुद्ध हो सकता है।
मूल प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों है कि हमें भगवान के साथ ही रहना है तभी हम खुश हो सकते हैं, भगवान से अलग होकर खुश नहीं हो सकते, ऐसा नियम ही क्यों है, राइट?
But why is it being treated as disease? Because if God is omnipotent, then He can create a situation as is needed. But it's almost like God is saying, I am helpless to treat you according to how I made you, which is not omnipotent.
तो प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों है कि भगवान से भिन्न होकर व्यक्ति को दुख मिलता है, क्यों भगवान के साथ में रहना है, इसके पीछे एक तात्विक उत्तर है। जीव क्या है या कौन है? भगवान का अंश। तो भगवान ने अपने आप को, अपनी शक्ति का विस्तार इन अंशों के रूप में क्यों किया है? क्यों? अपने आनंद की वृद्धि करने के लिए, आनंद को बढ़ाने के लिए। कैसे आनंद की वृद्धि होती है? रस कैसे? प्रेम का आदान प्रदान। तो क्योंकि भगवान रसिक शेखर हैं, अखिल रसामृत मूर्ति, तो भगवान श्री कृष्ण का अस्तित्व, उनका चरित्र इस प्रकार से है कि वो रस, आध्यात्मिक रसों का आस्वादन करना चाहते हैं। अब आध्यात्मिक रस किस पे निर्भर होता है? दिव्य प्रेम पर निर्भर होता है, और दिव्य प्रेम के लिए आदान प्रदान की आवश्यकता होती है। तो और कोई व्यक्ति चाहिए जिनके साथ हम प्रेम का आदान प्रदान कर सकें? अपने आप से हम प्रेम नहीं कर सकते, प्रेम किसी व्यक्ति के साथ करना चाहिए। तो भगवान ने अपने आप को विस्तार कर लिया अनगिनत जीवों में अपने तटस्था शक्ति के द्वारा, और उनके साथ फिर प्रेम का आदान प्रदान करना शुरू कर दिया। इससे आनंद की वृद्धि, प्रेम की वृद्धि होती है। तो जीव वास्तव में देखा जाए तो भगवान से भिन्न नहीं है, भगवान की शक्ति ही है। केवल जीव अणु है, भगवान विभू है, यही अंतर है। परंतु भगवान ने जीव को बनाया क्यों? ताकि जीवों के साथ प्रेम का आदान प्रदान हो जाए, और जीव को भी और भगवान को भी फिर दिव्य रस की प्राप्ति हो जाए। तो ये सब कुछ क्यों है? एक बार मेक्सिको में जब प्रभुपाद जी गए थे तो एक प्रोफेसर ने उनसे पूछा कि ये सब है क्यों, किसके कारण है ये सब, हम इतने सब प्राणी हैं, ये है, वो सब क्यों है, इसका कारण क्या है? तो प्रभुपाद ने काफी लंबा उत्तर दिया, परंतु अंत में एक शब्द में उन्होंने उत्तर दिया। वो कोई जानते हैं आप कौन सा एक शब्द है? इन सब चीजों का अस्तित्व क्यों है? क्या मूल कारण, सबसे मूल कारण इस अस्तित्व का क्या है? आनंद। प्रभुपाद जी ने एक शब्द में उत्तर दिया, आनंद। तो ये सब कुछ है केवल इस आनंद के प्राप्ति के लिए, आनंद के वृद्धि के लिए, आनंद को बढ़ाने के लिए। इसलिए उपनिषदों में कहा गया है एको बहुस्याम। फिर अंततः भगवान ने अपने आप का विस्तार किया अनेक जीवों में, और फिर उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान किया। परंतु उनमें से थोड़े जीव ऐसे भी थे जो कह रहे थे ठीक है हम नहीं करना चाहते हैं, तो ठीक है वहां कर लो। परंतु जो एक स्वाभाविक स्थिति है, नेचुरल कंडीशन, वो है कि जीव का भगवान से ही संबंध हो सकता है। जिस प्रकार से यदि उंगली चाहे कि मैं शरीर से अलग हो जाऊं, तो इट इज नॉट द नेचुरल कंडीशन, स्वाभाविक परिस्थिति नहीं है। जब उंगली शरीर से अलग होकर गिर जाएगी तो उस समय उंगली का कोई मूल्य नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जब जीव भगवान से अलग हो जाता है तब उसका मूल्य कम हो जाता है, जब भगवान से संबंध जोड़ लेता है तब उसका मूल्य बन जाता है। तो अंततः इस क्षेत्र में भी हमारे प्रश्नों का अंत यहाँ तक कृष्ण तक पहुँच के पूर्ण विराम, फिर इसके आगे और उत्तर नहीं हो सकते।
Doesn't that place the natural state of a living entity superior to Krishna's omnipotence?
क्या इसका अर्थ ये नहीं है कि जो जीव की प्राकृतिक स्थिति है वो भगवान के सर्वशक्तिमत्ता से श्रेष्ठ नहीं है? नहीं, क्योंकि भगवान के इच्छा के अनुसार ही तो ऐसी व्यवस्था बनी है। This has happened according to the Lord's plan, according to the Lord's arrangement, कि ऐसे जीव होंगे, जीवों के साथ भगवान का प्रेम का आदान प्रदान होगा, जीवों के बीच में भी, भक्तों के बीच में भी आध्यात्मिक रस का आदान प्रदान होगा। तो इसलिए ऐसी व्यवस्था कि यहाँ ऐसे क्यों है, ये हमारे लिए इस अवस्था में दुखप्रद लग सकता है। जैसे सोच लो कि बच्चे हैं, थोड़े बीमार हैं सारे बच्चे, और एक दूसरे साथ बात करते हैं, इसको पहला कड़वा औषध मिलता है, उसको इंजेक्शन मिलता है, उसको कुछ और मिलता है, सारे बच्चे सोच रहे हैं हमारे माता पिता अच्छे नहीं है, हाँ काम को ला के रख दिया उन्होंने, ये डॉक्टर हमको यहाँ सुई लगा रहे हैं, ये हमको कोई कड़वा औषध दे रहे हैं, हाँ क्योंकि जो डॉक्टर हैं और जो उन्हें बड़े लोग हैं वो जानते हैं, क्योंकि उनकी उनका स्तर चेतना का अलग है, ज्ञान है उनके पास, परंतु जो बच्चे हैं उनको लगता है कि ऐसा क्यों। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम बद्ध अवस्था में रहते हैं भौतिक जगत में तो हमें लगता है कि अन्याय है, क्रूरता है, इट इज़ क्रूअल, इट इज़ अनजस्ट, परंतु एक मुक्त व्यक्ति के दृष्टि से और भगवान के दृष्टि से पता चलता है कि इसमें क्रूरता नहीं है, भलाई के लिए ही, इस चेतना का को सुधार करने के लिए, इसका परिवर्तन करने के लिए यही एकमात्र उपाय है। जब बच्चे को समझेगा कि मैं अलग से नहीं स्वतंत्र हो सकता, मैं सुखी नहीं हो सकता हूँ, तो ऐसा नियम क्यों बनाया भगवान ने कि उनसे स्वतंत्र होकर सुखी नहीं हो सकते? क्योंकि वही गुण है, आत्मा का गुण, आध्यात्मिकता का गुण है ये, कि जीव किसी निम्न श्रेणी के पदार्थ में रमण नहीं कर सकता। तो भगवान ने ही ऐसी व्यवस्था बनाई है, सारे जीवों का आदान प्रदान आध्यात्मिक स्तर पे होता है, और इसके पीछे भगवान ने ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई, फिर ये भगवान की इच्छा, बस इसके आगे फिर और उत्तर नहीं। ये है सर्व कारण कारणम। तो अल्टीमेटली बात पहुंच जाती है, अंततो गत्वा बात पहुंच जाती है भगवान की इच्छा के, उसके आगे और क्यों नहीं पूछ सकते। क्यों पूछ पूछ के पूछ, देन वी कम टू द फाइनल पॉइंट विच इज कृष्णा। हमारे विदेशों में जो जो भक्त है ना, बहुत गहराई से पढ़ते हैं शास्त्र, बहुत रुचि है उनकी, वहाँ विदेशों में रह के भी इतना पढ़ना करना चर्चा आपस में करते हैं, बहुत अच्छा प्रचार भी करते हैं विद्यार्थियों में और अन्य लोगों में, वहाँ के विदेशी लोगों में भी। बहुत अच्छे प्रश्न किए उन्होंने। हरे कृष्णा, सब संतुष्ट हुए प्रश्नों से? हुए कि नहीं? हुए, ठीक है। हरे कृष्णा। अभी खेती वगैरह कैसे चल रही है? अभी सब ठीक ठाक, ऐसा पानी की व्यवस्था के सेवा शुरू हो गया फिर से बंद है, उसके बाद शुरू होगा आप सब कैसे है? सब ठीक है? सबकी तबीयत? मोरी से तेल लाता कि नहीं? सबको लाभ हो रहा है ना? ठीक है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा।